अल्लाह से मदद मांगते हुए सूरत अल फातिहा शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इसका हक अदा करने वालों में रखे। और ज़रा सा अपने ऊपर गौर कीजिए, मैं इस पे ही शुरू कराने से पहले ही आपको तदब्बुर कराऊं। सवाल कीजिए, आज तक मैंने कितनी दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ी? अनगिनत। ज़रा गिन गिन के कौन पढ़ता है इसका? तो मैंने लोगों को कोई वजीफ़ा भी नहीं करते देखा कि वजीफ़ा होगा तो फिर होगा। मैं सूरत फातिहा के बारे में कितना जानती हूँ? जितनी मेरी बातों को लिखेंगे ना उतना आपका दिल खुलेगा। ये आपके अपने खुद एहतसाबी के नुक्ते हैं। मैं सूरत फातिहा पढ़ती हूँ तो कभी मेरी तवज्जो कहीं इधर उधर तो नहीं होती? जब मैं सूरत फातिहा पढ़ती हूँ तो क्या मैं इसमें खो नहीं जाती? अब ये चंद सवालात जहन में रखिए और गौर करते हुए आइए, ज़रा से इसको हम लेके देखते हैं कि आज हम इसमें से क्या लेने वाले हैं। सूरत फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है, 7 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, बदले के दिन यानी कयामत का मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, इनका नहीं जिन पर गजब किया गया, और ना गुमराहों का। यह है जी सूरत फातिहा। बंदे और रब का ताल्लुक, जहन में एक तराजू को लाइए। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक आपको सूरत फातिहा में दिखता है। पहली 3 आयात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। ऊपर जाकर देखिए, या कना बुदू। जब बंदे को रब की इतनी खूबियों का पता चलता है, और अब देखिए अल्लाह ने अपनी बात की 3 एंगल से, वो आगे जाके हम देखते हैं। दूसरी तरफ देखिए अगली 3 आयात, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। अब 3 आयतें इधर तो 3 इधर, तो जो बीच की आयत है वो किधर है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये है सूरत फातिहा का खुलासा। आप अल्लाह की बंदी और अल्लाह आपका रब। ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा, मैं सबसे छोटी। इय्याका नअबुदु क्या है? इन्नी असगर, मैं सबसे छोटी हूँ। और इय्याका नस्तईन क्या? तू सबसे बड़ा है। अब इन सारी बातों को जहन में रखते हुए चलिए तदब्बुर करते हैं। आयात पर अमल लिखिए। दुआ सिर्फ अल्लाह सुबहाना ताला से करनी है। सूरत फातिहा की तरह दुआ से पहले अल्लाह ताला की हमदो सना कीजिए। नेक और सालेह लोगों की सोहबत में वक्त गुजारना है। कुरान और सुन्नत की महाफिल में शिरकत करनी है, क्योंकि इंसान जैसे लोगों में उठता बैठता है वैसा ही हो जाता है। कुरान पाक से रहनुमाई के 3 पॉइंट लीजिएगा। ये सूरत अल्लाह और बंदे के दरमियान बांट दी गई। सिर्फ अल्लाह की मदद से ही अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी का हक अदा हो सकता है। मुशरिकीन और मुनकरीन के तरीकों से बचें, बिदत और जहालत से दूर रहिए। आगे गौर व फिक्र के 7 पॉइंट्स दूंगी। अल्लाह ताला की हमदो सताइश और अजमत और बड़ाई का बयान है, इस पे गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला का एहसानो करम के परवरिश और देखभाल और बख्शिश की बात की तो रब्बुल आलमीन का तذکرہ किया। फिर अल्लाह ताला से मदद और इस्तेआनत और सिरात मुस्तकीम की दुआएं मांगी, इस पे गौर कीजिएगा। और दुआ में हमेशा देखिए जमा के सीगे आए हैं, इहदिना, नाबुदु, नस्ताइन। इससे पता चलता है कि अकेला बंदा दीन पे नहीं रह सकता। गौर कीजिएगा कि यहाँ वाहिद की जगह जमा के सीगे क्यों आए, तो ये आपको मुझे इज्तमाईयत की पहचान करवा रहा है। और इसी तरह से इसमें आपको जो पॉइंट समझ आ रहा है वो क्या है कि जितना ज़्यादा गौर व फिक्र करते जाएंगे आपको कुरान का एक बड़ा मौजू दिखेगा, और वो क्या है? तुम मेरे बन जाओ, हिदायत के ऊपर आ जाओ, और मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैंने दूसरों को नहीं दिया। और जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को मजबूत करते हुए इस सूरत को पढ़ते जाएंगे, उतना अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाएगा। तो सूरत फातिहा आपको मुझे एक चीज सिखाती है कि गाइडेंस इज अ गिफ्ट, हिदायत एक हदिया है, इसको कबूल कीजिए। हमारी रूहों को हिदायत की तलब है, खाने पीने से ज्यादा हिदायत की तलब है, और जब रूह को हिदायत मिल जाती है तो वो मुतमईन होती है। तो सूरत फातिहा में एक तलब थी, एक दुआ थी, एक ख्वाहिश थी, उसके जवाब में सूरह बकरा पहली सबसे बड़ी सूरह शुरू हो रही है। तरतीब में दूसरी सूरत है, पहले पारे में इसकी 141 आयतें हम पढ़ेंगे। एक वाक्या जहाँ आएगा उस पर बात करेंगे कि क्यों गाय के नाम पर एक सूरत अल्लाह ने रखी, क्या गाय पे कोई मजमून है? नहीं, उसके अंदर वो पैगाम है उस वाक्य में जिससे अल्लाह ताला की तरफ बंदा बढ़ता ही जाता है। मदनी सूरत है, 286 आयात हैं, तवील तरीन सूरत है। इस सूरत को सिनामुल कुरान भी कहते हैं, कुरान की चोटी, यानी इसमें ऊंचाई है, इसमें बहुत से अहकाम है। और ज़हरावैन में से आधा लफ्ज़ कर दें तो सूरतुल ज़हरा भी कहते हैं, चमकती हुई सूरत है। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह दिखाने वाली है, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। इसको हाईलाइट कर लें। उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलेगी, दुनिया में कोई बंदा आपको मुझे हिदायत नहीं दे सकता। फरमाया, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। ये हैं जी 5 आयतें, आयत 1 से 5। लिखिए अमल के नुक्ते, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को शरीयत इलाही के ताबे करना है। फिर इसमें यकीमुन सलाह है, इस पे गौर कीजिएगा। नमाज पढ़ते नहीं, कायम रखते हैं। यहाँ भी इज्तमाईयत की बात है। नमाज के मामले में अपना मुहासबा कीजिए, मेरी नमाजें कैसी हैं। फिर अगला देखिए, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। मिन के लफ्ज़ से बता दिया गया, कुछ तो दे दो, सारा नहीं तो कुछ तो दे दो। आखिरत पर अपने ईमान और यकीन को जांचने के लिए माल खर्च करना है, नियत कर लीजिए, अजर अभी से मिल जाएगा। और इसी तरह से अल्लज़ीन युमिनून बिलगैब व युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून में बता दिया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च सिर्फ वही करेगा जिसको गैब का यकीन होगा, कि ये आज अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ, कल अल्लाह मुझे इसको वापस पलटाएगा। और आखिरी लफ्ज़ देखिए, व बिल आखिरतिहुम यूक़िनून। यकीन इल्म का सबसे ऊंचा मुकाम है। यकीन किसे कहते हैं? लिखे, यकीन उसे कहते हैं जिसमें किसी भी एतबार से कोई शक दाखिल ना हो सके। तो जितना ज्यादा आखिरत का यकीन बढ़ता जाएगा, उतना अल्लाह ताला आपको इन चीजों में आगे से आगे बढ़ाता जाएगा। और फिर अगली बात जहन में रखिएगा कि जितना गौर व फिक्र करते जाएंगे अपनी फिक्र लगेगी। कुरान से रहनुमाई के 3 पॉइंट लीजिएगा। अपनी चाहत पर अल्लाह की चाहत को मुकद्दम रखिए। कामयाब शख्स की सिफात अपने अंदर लाने की ख्वाहिश रखनी है। अपने अकायद को मजबूत करना है, ईमान को बढ़ाना है, और ईमान पर साबित कदमी मोमिनों की अहम सिफत है। अब गौर व फिक्र के गोशे नोट कीजिएगा 7 पॉइंट। पहली बात है कि सूरतों के शुरू में अलिफ लाम मीम जैसे हरूफ का होना कुरान पाक के एजाज को साबित करता है, एक मोजज़ा है। मोजज़ा क्या होता है? जिससे अक्ल आजिज़ आ जाए। आप हैरान होंगे कि कुरान पाक की वो सूरतें जिनको अल्लाह ने हरूफ मुकत्तात से शुरू किया ना, उन सब के शुरू में कुरान की बात है। अरबों को चैलेंज किया जा रहा था। दूसरी बात, कुरान ऐसी किताब है जो तमाम असूली और फरोई मसाइल में बंदों की रहनुमाई करती है। यानी असूली कहते हैं जड़ बुनियादें, और फरोई यानी शाखें, छोटे बड़े मसाइल का हल इस कुरान में। तीसरी बात, हक को बातिल से और सही को ज़ईफ से छांट कर ये कुरान वाजे कर देता है। आप मेरी आपकी बात ना सुने, किसी की ना सुने, दिल को साफ करके इस कुरान को सुन लें। आपका दिल बताएगा कि क्या हक है और क्या बातिल है। और चौथी बात, तमास को कायम करने का मतलब जाहरी और बातनी तौर पर इसकी रूह के साथ इसको अदा किया जाए, इसकी कोशिश करनी है। और अगला पॉइंट, अब मैं नंबर नहीं बोलूंगी लेकिन आपको अमूमन यही फिगर मिलेंगे। अगली बात क्या है गौर व फिक्र की, कि अल्लाह की राह में माल खर्च करना शुक्र गुजारी को जाहिर करता है। आप देखिए कि हम जिस चीज़ को बहुत अहम समझते हैं उस पर खर्च करते हैं ना, तो अल्लाह की राह में जो खर्च करेगा वो अल्लाह का कदरदान और शुक्रगुजार बंदा होगा। और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से लोगों की मदद करने से इंसान के अपने लिए आला और कामिल रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। इसको लिख लें, जितना देंगे उतना मिलेगा। और यकीन इल्म का सबसे ऊंचा मुकाम है। दुआ कीजिए इस साल दौरे कुरान में ईमान से बढ़कर यकीन मिल जाए। आमीन। आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 6, काफिरों का आपको डराना या न डराना बराबर है, ये लोग ईमान न लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बड़ा अजाब है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं। वो अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं मगर समझते नहीं। इनके दिलों में बीमारी थी और अल्लाह ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया, और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अजाब है। क्या बीमारी है? ख्वाहिश परस्ती, शहवत परस्ती, नफ्स परस्ती। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इसलाह करने वाले हैं, खबरदार हो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर यानी समझ नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि और लोगों यानी सहाबा कराम की तरह तुम भी ईमान लाओ, तो जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ही ईमान लाएं जैसा बेवकूफ़ लाए हैं। गौर कीजिए इस टोन को, आज भी अल्लाह वालों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ हैं लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ इनसे मजाक करते हैं। मुनाफिक दो रुखा होता है, अल्लाह ताला भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया, बस ना तो इनकी तिजारत ने इनको फायदा पहुंचाया और ना ये हिदायत वाले हुए। आयत नंबर 6 से 16 पढ़ी है मैंने आपके सामने। इसमें पहली दो आयत कुफार से मुतल्लिक और अगली आयत मुनाफिकीन से मुतल्लिक थी। आइए जरा तदब्बुर और अमल करते हैं इन आयत पे। आयत पर अमल क्या होगा? इस्लाह के नाम पर दुनिया में किए जाने वाले फसाद को पहचानना है। मसलन औरतों की आज़ादी, आज कुछ लोग औरतों के हकूक के नाम पे, हकूक निस्वा के नाम पे असल में औरतों के करीब हो रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ों से बचिए, ऐसे ड्रामे, फिल्में, नसीहत आमोज, घरेलू ड्रामे, ये सारा कुछ चाहिए। झूठ को सच करके दिखाना ये भी इसी में है। इसी तरह हमने इन आयत को पढ़कर अमल क्या करना है? निफाक से अल्लाह की पनाह तलब करनी है। एक अलिफ का फ़र्क है निफाक और इनफाक में। इनफाक खर्च करना, निफाक मुनाफ़त। जब दिल में निफाक आता है तो इंसान अल्लाह के रास्ते में ना वक्त लगा सकता है, ना माल, ना स्किल्स, ना एफर्ट्स। और इसी तरह मुनाफिकीन के शर से बचने की दुआ भी करनी है। कुरान पाक से रहनुमाई के नुक्ते लिखिएगा। नाफरमानी की वजह से दिलों पर मोहर लग जाती है, इसलिए हर छोटी बड़ी नाफरमानी से बचने की पूरी कोशिश करनी है। दो रुखे लोगों के धोखे में आने से बचना है, और चारों तरफ यही जाल फैले हुए हैं। दो रुखे लोग नेक लोगों को हकारत से देखते हैं, हमने उनको इज्जत से देखना है। आज भी आप देखिए जरा सा कोई दीन पे अमल करे, कहते ये क्या बन गए, मौलवी बन गए। दूसरों को क्या कहना, हम तो खुद अपने नबी की सुन्नतों पे अमल को पसंद नहीं करते। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। गौर व फिक्र की बात नोट कीजिएगा, मासीयत यानी नाफरमानी से इंसान हक तक पहुंचने से महरूम हो जाता है, इसलिए गुनाह छोड़िए। आप चाहते हैं ना आपको हक मिले, आपके दिल में हक उतरे, कुरान हक है, अल्लाह की ज़ात हक है, तो गुनाहों को छोड़िए। इमाम शाफी के उस्ताद ने भी, वकी उनका नाम था, यही नसीहत उनको की थी कि तरकल मासी, क्योंकि फाइनल इल्म नूरन, इल्म नूर है, और अल्लाह नाफरमान दिल को नूर नहीं अपना देता। इसी तरह मुनाफिकीन काफिरों से ज्यादा खतरे में। काफिर तो खुलेआम वार करता है ना, मुनाफिक तो पीठ पीछे के वार करता है। कान और आंख अकल और फहम के लिए बेहतरीन जरिया है, इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, जैसे इस वक्त माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, आंखों से आप देख रहे हैं कुरान को, इस तरह सोच रहे हैं, फहम कर रहे हैं, तो इस वक्त आप बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं अपनी नेमतों से। अल्लाह ताला इनको बढ़ा दे। और अगली बात है कि मुसलसल गुनाह दिलों पर पर्दा डाल देते हैं, और दिल पे पर्दा पता क्या है, फिर गुनाह गुनाह नहीं लगता, बुराई बुराई नहीं लगती, कभी मजबूरियों के नाम पे, कभी मसलियतों के नाम पे, कभी लोग क्या कहेंगे के नाम पे, तो हमें इंशाल्लाह इससे बचना है। फिर अगला नुकता यह है कि दुनिया की चाहत और आखिरत से गफलत दिल का रोग है, हमने इंशाल्लाह दुनिया को कम करना, और खुद ही कम हो जाएगी। अभी तो आपका पहला दिन, अभी तो आपका डे वन है, न्यू बॉर्न बेबीज हैं आप, कुरान के नाते से आप देखिएगा कि जिसको जन्नत नजर आने लगती है उसको दुनिया की कोई कशिश नहीं रहती। आखिरत से जो गफलत है ना, इंशाल्लाह ये पर्दे छटेंगे। दुनिया के हम और गम अल्लाह की तरफ आने नहीं देते, अपने दिलों को दुनिया के गमों से बेनियाज कर लें। अल्लाह के सपोर्ट कर दिया करें अपने सब बच्चों को, नेमतों को, रिस्क को, माल को। इस तरह जलालत और गुमराही की तरफ रगबत हिदायत से दूरी है, जितना गलत चीज़ों में जाएंगे ना उतना हिदायत से दूरी है। बच्चे को माँ का दूध मिलता है ना खुशी से पी लेता है, जब नकली चीज़ें पिला देंगे ना, चीनी मिले, शरबत और जूस और इस तरह चॉकलेट, तो दूध छोड़ देता है। हमारी फितरत भी ऐसी है, कुरान सुन्नत के करीब रहेंगे ना तो आपका दिल और सुनने को करेगा, और जब छोड़ देंगे तो और दूर होता है। अल्लाह आपको मुझे मुनाफ़त से बचाए। अब इसी निफाक को समझने के लिए आगे दो मिसालें हैं, आयत नंबर 17-18 देखिए। मसलुहुम, इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आस पास की चीजें रोशनी में आई ही थी कि अल्लाह इनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, जो नहीं देखते, बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वो हिदायत की तरफ नहीं लौटते। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरी और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है, करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए, जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहे तो इनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। क्या पता चला कि मुनाफिक फायदों का हरीस होता है। एक निफाक होता है दिल का रोग, दिल से इस्लाम अच्छा नहीं लगता, अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से प्यार नहीं, ऐसे लोग कम है। दूसरा निफाक कॉमन है दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत, इस्लाम भी पसंद है, लेकिन दुनिया, ख्वाहिशें, अमली निफाक कहते हैं आज के मुसलमानों में ये ज्यादा है। ख्वाहिशें, दुनिया दुनिया, हर एक भाग रहा है, हर एक को दुनिया, हरम में जाकर भी लोग सेल्फियां बना रहे हैं, भाई तुम इतनी दूर क्या करने आए हो, घर में बैठ कर ये काम कर लेते। निफाक है, इन चीजों से बचना है। अल्लाह ताला ने आपको मुझे इन सारी चीज़ों से जो फ़ायदा उठाने की दावत दी है, और जितना ज़्यादा आप इससे अपने आप को करीब करते जाएंगे आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ तक तो बात हुई मुफ्लहून की, कुफार की, और उसके बाद निफाक की। अब पहली पुकार आपको आपके रब की, या अय्युहन्नास, ज़रा फील कीजिएगा इसको। कुरान क्या है, रब का पैगाम अपने बंदों के नाम, तो क्या फरमाया, या अय्युहन्नास उबुदु रब्बकुम, ऐ लोगो अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी, खबरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर न करो, हमने अपने बंदे पर जो कुछ उतारा है इसमें अगर तुम्हें शक है तो तुम सच्चे हो, तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ, तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो, बस अगर तुम ना कर सके, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नार, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते तो इसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। नोट कीजिए, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए आग तैयार नहीं की, कि कुछ लोगों को खुद ही शौक है, भाग भाग के आग की तरफ जाते हैं। तो याद रखिए, या अय्युहन्नास से लेके अल्लाह ने यहाँ तक मक्की कुरान का पूरा खुलासा दे दिया। असूल सलासा इस हिस्से में हमने पढ़ लिए, ईमान बिल्ला, ईमान बिल रसूल और ईमान बिल आखिरा। कब्र के तीन सवाल पढ़ लिए, आइए इन आयात पे कुछ तदब्बुर और अमल करते हैं, आयत 17 से 24 तक। पहली बात है, कुरान पाक की मिसालों पे गौर व फिक्र करना है। इस साल आपने हर वो आयत जिसमें कोई मिसाल है ना, जैसे ये अभी तमसीलात गुजर रही हैं, तो इनके नंबर नोट करने, बाद में गौर करना है, क्योंकि मिसालें गौर फिक्र के लिए होती है। और दिल के नूर की दुआ कीजिए। ये आप देखिए कि इसमें निफाक जो है ना, दिल का रोग है, तो दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अंता जलल कुरान अलअजीम रबी अकल्बी व नूर सदरी व जला खुजनी व जहाब गमी व हमी। सुबह फजर की सुन्नतों के बाद नबी सल्लम जब मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जाते तो आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरा व बसरी नूरा। तवील दुआ है जिसमें जिस्म का एक एक हिस्सा आ जाता है, हड्डियाँ, गूदा, दिमाग, आंखें, चेहरा, सब कुछ। तो इस दुआ को पढ़िए, या अमल का नुक्ता अपने लिए लिखिए कि फजर की सुन्नतों के बाद ये दुआ पढ़ने की सुन्नत को इंशाल्लाह हमने उजागर करना है। इसी तरह कुरान का पैगाम घर घर पहुंचाना है। याद रखिए, जो कुरान सीख रहे हैं उनको रोकने वाला बनना है आपने। ये नसीब है आपका, मेरा खैर की बात से आप रोकेंगे नहीं, हमने बुलाना है और इन्फॉर्म नहीं करना बल्कि इन्वाइट करना है, मधु करना है, खबर नहीं देनी। फिर कुरान पाक से रहनुमाई के नुक्ते, अल्लाह ताला की इबादत वजूद का असल मकसद है। सूरत जारियात की आयत क्या आती है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। इसी तरह गौर और तदब्बुर से ईमान और यकीन में इजाफा होता है, इसलिए गौर व फिक्र करना है। शिर्क शरई और अकली दोनों एतबार से गलत है, यानी दुनिया में किसी को हक ही नहीं है कि अल्लाह के मुकाबले पे आ जाए, और इस बात को हमने अपने दिलों में बिठाना है। फिर गौर व फिक्र की बात है, निफाक दुनिया के फायदों के पीछे भागने के लिए एक तरह, ऐसे लगता है कि दुनिया में एक बंदा रोशनी उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन ऐसे शख्स को आखिरत की रुसवाइयाँ मिलेंगी जो अंधेरों की सूरत में है। निफाक जो है ना, असल में दुनिया के फायदों के साथ आखिरत की भी लेने की ख्वाहिश होती है। इस तरह दो रुखे लोग हक की तरफ नहीं पलटते, दो रुखे लोग जहन्नुम का ईंधन बनते हैं। अल्लाह की इबादत उसी तरह करनी है जैसे उसने हुक्म दिया है, यानी इबादत भी उसी की, हुक्म भी उसी का, और कुरान अल्लाह का कलाम है। हक को जानकर अनजान नहीं होना। और इन सारी बातों को पढ़ते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम वही किताब पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ने दुनिया के सबसे सच्चे इंसान के दिल पे उतारी। इसी सूरत में वायत आने वाली है कि जिससे पता चलता है कि कुरान नबी सल्लम के दिल पे नाजिल हुआ था। अब कुरान दावत क्या देता है, अच्छे काम करोगे तो क्या मिलेगा और बुरे काम करने वालों को क्या मिलने वाला है, अगली आयतों में, यानी अब आयत नंबर 25 से ऑनवर्ड में देखेंगे। जन्नत और जहन्नम, यानी इस पूरे रुकू में पूरे दीन का एक किस्म का खुलासा आ गया। फरमाया, वबशिरिल्लसीना मनुअमिलुस्सालिहात, और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे, और इनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और वो इन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह आपको मुझे ऐसी जन्नतें अदा कर दे। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज की। ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कुफार कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह की क्या मुराद है। इसके जरिए बहुत सारे लोगों को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, यानी एक ही दवा और मुख्तलिफ फायदे, एक को फायदा एक को नुकसान, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों ही को करता है। आप देखिए, हर कुरान पढ़ने लगे कोई हिदायत नहीं मिलती। इस वक्त आप कुरान सुन रहे हैं ना इतने शौक से, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, लेकिन सबको हिदायत नहीं मिलेगी। कोई गलतियां चुनने के लिए सुनता है, उसको गलतियां मिलेंगी। कोई सिर्फ सवाब के लिए सुन रहा होगा, उसको सवाब मिलेगा। किसी को भी है कि अब दौरे कुरान करना तो है तो कर ही लेते हैं, आपने मैंने किस लिए लेना है, अपनी इसलाह। गौर व फिक्र, तदब्बुर और अमल ये जहन में रखिएगा, और अल्लाह में नाफरमान होने से बचाए। फासिक कौन होते हैं, यहाँ नोट कीजिएगा, अभी तक कुरान के हिस्से में जितना हिस्सा पढ़ा ना, चार गिरोह पढ़ लिए, मुफलिहून, काफिर, मुनाफिक, और अब ये फासिक कौन है, रिबेलियस, डिसोबीडियंट, खुले ओपनली गलत काम करने वाले, न्यूड फिल्में बनाने वाले, गंदे काम करने वाले कौन होते हैं, उसकी पहचान दी अल्लाह ने। अल्लज़ीना, वो लोग जो अल्लाह के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं, और अल्लाह ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिए इन्हें काटते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। नोट कर लें, अल्लाह से भी कटे, बंदों से भी कटे, फासिक रिश्तों को तो काटता है। रिश्तों को जोड़िए, अपने घरों में सुकून लाइए। आज यहाँ अमल का नुक्ता लिख लें, किसी रिश्तेदार से मोहब्बत से बात कीजिए, उनका कोई दुख दर्द सुन लीजिए। अल्लाह ताला पूछते हैं, कई फतक फुरू न बिल्लाही, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे और इसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसरत किया और इनको ठीक ठाक सात आसमान बनाया, वो हर चीज को जानता है। यहाँ देखिए आयत नंबर 2 से 27 तक, हिदायत के एतबार से चार गिरोह इकट्ठे हो गए। नंबर 1 आयत 5 तक, अल मुफ्लहून, इनको कहते हैं महफूजून मिनन नार, आग से महफूज रखे जाने वाले लोग। फिर आयत नंबर 6-7 में काफिरून, अहल नारी इलल अबद। फिर आयत नंबर 8 से लेके 20 तक, मुनाफिकून, इनका अंजाम फिर दर की असली मिनन नार, आग के अंदर होंगे, जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में, क्योंकि सबसे नीचे ज्यादा हीट होगी। और अब यहाँ हमने पढ़ा अल्फा से कौन खासिरों, चार मुख्तलिफ रवैये, चार मुख्तलिफ अंजाम। याद रखिए अच्छे काम तो करते हैं, नीयत ठीक रखिए। अमल सवाले की बात इस रुकू में हुई तो अमल सवाले की दो शरायत हैं, एक तो यह कि वो अमल अल्लाह के लिए हो, लिल्लाहियत, लिल्लाही फिल्लाही बिल्लाही, और दूसरा अमल साले हो हर सुन्नत अमल के मुताबिक। आमनू में हर अमल अल्लाह के लिए, और अमल सालेहात में अमल सुन्नत के मुताबिक। चलिए नबी सल्लम आपके लिए मेरे लिए उसमें हसना है, क्या अमल हुसना है, जो अमल करें उससे पहले एक दफा चेक करें अल्लाह के नबी करते थे, सारी बिदात का कला कमा हो जाएगा। कोई भी काम जो नेकी समझ के साल के किसी खास दिन या रात में या मौके पे कोई करे, बस एक दफा उसको चेक कर ले कि अल्लाह के नबी सल्लम ने ये किया कि नहीं। तो अल्लाह ताला आपसे मुझसे ईमान के साथ अमल सवाले का तकाजा करते हैं, हम इस साल नबी सल्लम के उसवे को इस नियत से भी पढ़ेंगे कि अल्लाह हमारी जिंदगी से बिदात को निकाल दे जो किसी न किसी नाम से किसी न किसी वजह से हमारे साथ लगी हुई है। तदब्बर और अमल के नुक्ते देखते हैं आयत 25 से 29 तक, जन्नत की नेमतों की ख्वाहिश और इनको पाने के लिए अमल और दुआ करनी है, अभी कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना बगैर हिसाब, अल्लाह ऐसे अमल करने वाला बना दे जो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। फिर चूंकि अहदों की बात थी तो अपना कोई भूला हुआ अहद याद कीजिए और उसको पूरा करें, किसी से कोई वादा किया और पूरा ना किया, कुछ दूंगी नहीं दिया, ये करूंगी नहीं किया, तो आज आपका होमवर्क है ये कि आपने अपना कोई वादा याद करना है और उसको फिर पूरा करना है। फिर इसी तरह रिश्तेदारियों की बात हुई तो अमल का नुक्ता लिखें, किसी नाराज रिश्तेदार से या तो मुलाकात करें या फोन करें, करेंगे आप ये बोले मेरे से तो कोई नाराज ही नहीं, मैं भी किसी से नाराज नहीं। देखिए अगर कहीं भी दिल में कोई ग्राज या गुस्सा है ना, कॉल कर लें, इतनी मेहनतें आप रोजे रख के करेंगे, और अगर कीने हुए या किसी से 3 दिन से ज्यादा हो गया, आप बोल ही नहीं रहे, झगड़ रहे हैं, अपनी जात के गुस्से गिले हैं, तो फिर नेकियां जाया हो जाती हैं। कुरान पाक से रहनुमाई कैसे मिलेगी, इंसान की ख्वाहिशात सारी जन्नत में पूरी होंगी, यहाँ अगर कोई ना पूरी हो ना तो अल्लाह को क्या कहा करें, अल्लाह वहां पूरी करूंगी। अल्लाह का शुक्र है दिन रात कुरान के साथ गुजरता है, कहीं रात जाते हैं शादी में दावत में, कहीं कोई चीज अच्छी लग जाए ना तो कभी ख्याल आए, कभी वंस अ ब्लू मून जिसको कहते हैं, तो मैं अल्लाह से कहती अल्लाह तला वहां लेनी है, दुनिया में तो सारी मेरी जान छुड़ा दे इन चीजों से, खुद बहुत ख्वाहिशात ट्रांसफर होने लगती हैं आपकी जन्नत में। तो आपको कोई चीज ऐसी लगती है जिसको लेने में रखने में वक्त मेहनत पैसा लगता है, अल्लाह से ऑर्डर दे दिया करें, जैसे यहाँ ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर बाद में जाके मिल जाती है ना डिलीवरी, जन्नत के खूब अच्छे ऑर्डर दीजिए। फिर सर मोमिन अल्लाह के हुक्म को कबूल करता है जबकि दो रुखा शख्स उसको रद्द करके बहस और मुबाहसा करता है, ये बात आज ही लिख ले, माने के ना माने कोई बात सुनकर, लेकिन उसको झुठलाना और बहस करना छोड़ दे। तौफीक मांगे, अल्लाह आज अभी सुन रही है नहीं, अमल आ रहा आ जाएगा, पढ़ने दे सुनने दे अमल करूंगी, लेकिन जो आगे से बहसों में और लॉजिक्स देने लगते हैं ना उनको हिदायत नहीं मिलती, मुस्तहज़ीन को हिदायत नहीं मिलती। फिर सर ईमान हक और बातिल में एक कसवटी है, जितना ईमान होता है हक खुल के निथर के सामने आता है, अपने दिल से तो पूछा करें क्या चीज सही है क्या गलत है, कोई गलत है तो कोई दूसरा आपको बताएगा ये गलत है, नहीं, कुरान को हक बात का, दिल को हक बात का मुहाफिज बना लीजिए, अल्लाह खुद आपके दिल को हिदायत देंगे। इस तरह गौर व फिक्र के गोशे देखते हैं। खुशखबरी देना मुस्तहब है, तभी तो अल्लाह कहते हैं बशीरिल्लज़ीना आमनू, तो आप भी खुशखबरियां दिया करें। आज लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, बड़े दुखी दुखी रहते हैं, मुस्कुराना तक भूल गए, तो आपने इंशाल्लाह लोगों को खुशखबरियां देनी। कोई अच्छी खबर सुनाया करें, बुरी खबरें ना सुनाया करें। कोई बुरी खबर, बैड न्यूज़ है, डिलीट इट। कोई नेगेटिव बात है, डिलीट कर दीजिए। कोई और बता देगा, मैं क्यों बताऊं, वहां ये हुआ वो हुआ, तो लोगों को खुशियां दीजिए। और हदीस है कि जिसने लोगों के दिल में खुशी भरी, बहुत बड़ा उसके लिए अजर है। इस तरह अमल साले की बुनियाद चार चीजों पर, ये जरूर लिखिएगा। आपको अमल साले करना है तो उसके लिए इल्म, नियत, सब्र और इखलास। इसी तरह जन्नतियों को नहरों और बागात की बिशारत है, तो जरा सा गौर व फिक्र करने के लिए किसी नहर के किनारे चले। है जद्दा में कोई ऐसी चीज, कोई नहर, दरिया, समंदर, कॉर्निशन, क्या बोलते हैं, बहुत है, तो कोई प्लान बना लेते हैं इंशाल्लाह। फिर इसी तरह जन्नती मुतहर और पाकीज़ा होंगे, बीवियां भी और शौहर भी, तो हमने भी पाक साफ रहना, साफ सुथरे रहें, रोज शावर लें, कभी पसीने में से उठ के ना आ जाए, घर के कपड़े बाहर, बाहर के कपड़े घर में ना पहने, और अपनी सोच को पाक रखें, अकल को पाक रखें, नज़रों को पाक रखें। गंदी चीज़ नहीं देखनी, गंदी चीज़ नहीं सुननी, लफ्ज़ नहीं बोलने, मैंने गलत चीज़ें नहीं लिखनी, तो इंशाल्लाह आप पाक ही पाक होंगे, फिर जन्नत पाक है। इसी तरह से आप देखिए कि जन्नत में ना मौत है, ना जवाले नेमत है, वहाँ सब कुछ हमेशा के लिए होगा। अल्लाह आपको मुझे वहाँ ले जाए। कुरान पाक के गलत मतलब निकालना गुमराही है, इससे बचना है। सीधी सीधी बातें सुने, ज्यादा घूमती फिरती बातों की हमें जरूरत नहीं। आज इसका बड़ा गर्रा है, ये नया नुक्ता लेकर आए जी, ये मोटिवेशनल है, ये फलां, कोई जरूरत ही नहीं है। याद रखिए, एक असूल लिख लें कि दुनियावी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेट्स हैं ना, इसमें लेटेस्ट लोग चाहते हैं, जैसे माशाल्लाह आजकल iPhone 16 Plus फलां की बातें हैं ना, जितना आगे आएंगे लेटेस्ट है। आपको 2025 की गाड़ी चाहिए, ठीक है, आपका हक है, जो मर्जी करें। दीन में जितना पीछे जाएंगे उतना आपके लिए सिक्योर होगा। तो आप मुझसे पूछ लें कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको खुद ही बता दिया मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, सलफ सालेहीन, तफसीर साजिदी। फिर आप देखिएगा कि जैसे इस वक्त वैसे तदब्बर वाला अमल है, जितना सहाबे कराम और अपने सलफ सालीन के करीब रहेंगे ना, सिक्योर रहेंगे, तो कोई नए दिन में चुटकुले देने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी चीज को लेकर चलेंगे, क्योंकि गुमराही फिस्क तक ले जाती है। अल्लाह ताला आपसे मुझे इससे बचाए। अब आगे बड़ा खूबसूरत टॉपिक आ रहा है, अगर आप अभी तक देख रहे हैं ना, हिदायत की दुआ मांगी सूरह फातिहा में, जालिकल किताब बुला रही बफी में खुल गई। चार किस्म के लोग हमें बता दिए, मुफलिहून, इसी तरह काफिरून, मुनाफिक और फासिक हो गए, कि तुम इनमें से ना होना। फिर यही ना सो बदू से लेके रुकू का एंड जो भी हुआ है, तो इसमें इंसानियत के नाम रब का पहला पुकार, और उसमें तौहीद, रिसाला और ईमान बिल आखरा में जन्नत और जहन्नुम पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, हम कहाँ से आए, बच्चा भी ये पूछता है, मामा हम कहाँ से आए, हमारा क्या तसोर, तो जहूर आदम और इंसानों की हिदायत और गुमराही की इब्तदा, ये अगला टॉपिक है आयत नंबर 30 से, यानी पहले इंसान की कहानी। कुरान देखेंगे अब सिस्टमेटिकली आपको हर चीज वाजे करता जाएगा। वइस काल रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को तू क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, क्या कि इंसान का मकसद है तख्लीक मेरी इबादत है और इस कायनात की तस्खीर। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को तमाम नाम सिखा कर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश कर दिया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ, पर इन सब ने कहा है अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म और हिकमत वाला तो तू ही है। यहाँ इल्म की अहमियत नोट करें। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम इनके नाम बता दो, जब उन्होंने बता दिए तो फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो, जो तुम छुपाते थे। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकबर किया और वो काफिरों में से हो गया। और हमने कह दिया आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां कहीं से चाहो बफरागत खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब भी न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने इनको बहका कर वहां से निकलवा ही दिया। और हमने कह दिया कि उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए जमीन में ठहरना और फायदा उठाना है। ये है जी अल्लाह ताला का क्रिएशन प्लान। अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहि सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख ली। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला ये है आपका मेरा रब। इतनी जल्दी मान जाता है, बंदे नहीं मानते, रब बहुत जल्दी मानता है। तो जरा सही आयत पे गौर व फिक्र करते हैं। जैसा कि स्टोरी से आपको पता चला, पहले इंसान की कहानी है। पहली बात तो इसमें अपने लिए लिख लें कि हम बंदरों की औलाद नहीं है। डार्विनिज्म की मत मार दी इस आयतों के ऊपर गौर व फिक्र ने। आज भी लोग PhD करते हैं, ऐसे मिथ पढ़ाते हैं। हमारी नस्लें ये बढ़ रही हैं। कुरान सुन्नत से जोड़िए तो आपको पता चलेगा कि हम आदम की औलाद है। आदम पहले इंसान थे, फिर जब आए 30 से 37 पे तदब्बुर और अमल करते हैं तो क्या पता चलता है? इल्म, इल्म। जरूरी अहम मसाइल सीखने के लिए वक्त निकालिए, ये पहला अमल का नुकता है। इस पे हम क्यों पूछते हैं दूसरों से? उम्रे पे जाते हैं दो सवाल करते हैं, हज पे जाते हैं दो सवाल करते हैं, कोई तलाक किसी को होने के को हालात बने तो सवाल 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 क्यों? रमजान में सवाल, हर वक्त जहन नहीं उलझा रहता बेचारी खवातीन का? आज सवाल जवाब के ग्रुप्स कितने फेमस हैं, लोग कहते हैं सवाल जवाब बता दें। क्योंकि इल्म नहीं है, इल्म लीजिए। अंबिया करम खुसूसन आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें। चलिए आपको होमवर्क दे देती हूँ, कसस नबीयीन में से हजरत आदम का किस्सा पढ़िए और उस पर गौर व फिक्र करना है आपने इंशाल्लाह। गुनाहों से तौबा की दुआ याद करनी है और घर वालों को भी याद करवानी है कोई गुनाह हमारा गिने ना जाए। आदम ने गुनाह से तौबा की, ये आदमियत है। इबलीस ने गुनाह करके उस पे और अकड़ का इजहार किया, ये इबलीसियत है। खुद से पूछिए अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होती हूँ या फिर उस पे सफाइयाँ पेश करती हूँ। कुरान पाक से रहनुमाई के नुक्ते, उलमाए कराम इल्म के वारिस होते हैं, इनका अदब और एहतराम कीजिए। देखिए किसी से फ़ायदा ले ना ले इट्स ओके, आप किसी से मुत्तफिक हैं कि नहीं इट्स ओके, कोई आपके मसलक से है या किसी गैर मसलक से इट्स ओके, लेकिन कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट ना कीजिए। ये अल्लाह को चैलेंज करना है। छोटे मुंह बड़ी बात, हम चार लफ्ज़ पढ़ के दूसरों पे तनकीद करनी शुरू हो जाते हैं। हर आलिम दीन की इज्जत कीजिए, फ़ायदा उनसे लीजिए जो कुरान सुन्नत के करीब है। इसी तरह से अगला अमल लिखिए, कुरान की तस्बीह करना चूँकि फरिश्तों की सिफत है, हमने भी अल्लाह ताला की तस्बीह करनी है। तो एक दफ़ा कह दें सुबहानल्लाहि सुबहानल्लाहिल्लज़ीम। आपकी आवाज़ है, मेरा माइक जो ना ये रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन यहाँ आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लग रहा है। इल्म के किसी भी दर्जे पर पहुंच जाए फिर भी अपने इल्म में इजाफे की दुआ करें, ये बहुत अहम है। तो मांग ले रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मैं इल्म में बढ़ा दे। गौर व फिक्र के गोशे, इसमें चूंकि खिलाफत की बात हुई तो याद रखिए कि इंसान अल्लाह का खलीफा नहीं है। ये गलती लगती है लोगों को कहने में, क्योंकि अल्लाह को कहीं नहीं जाना, उसको कोई जवाल नहीं है, इंसान एक दूसरे का खलीफा है। लेकिन इसमें इमामत की बात है तो मुसलमानों के इत्तहाद के लिए इमाम वक्त की इताअत की अहमियत पता चलती है। यानी अगर सही हुक्मरान हैं, कुरान सुन्नत को फॉलो करते हैं, तो आपका मेरा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। गुनाह सरजद हो जाने पर फ़ौरन रुजू इलाल्लाह करना है। बंदा है बशर गुनाहगार है, अपने गुनाहों पर शर्मसार हों, तौबा कबूल करें और अल्लाह को ऐसे ही कहें अल्लाह आपने आदम की भी तो तौबा कबूल कर ली थी ना, तो मेरी भी कर लीजिए। ममनू और मुश्तबे चीज़ों के करीब भी नहीं जाना, कोई ऐसी चीज़ जिसे ज़रा सा शक भी पड़े उसको छोड़ दीजिए। तौबा अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया बन जाती है। अल्लाह मुझे आपको अपनी कुर्बत दे दे। और आप देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इज्जत दी, पहला ऑनर इल्म दिया, इल्म लीजिए, फिर इसके बाद उनको फरिश्तों के सामने पेश किया, दुनिया की चीज़ें दी। ये आयात हमें दुनियावी उलूम की अहमियत भी बताती हैं। आज इल्म के पहाड़ हैं दीनी तौर पे, लेकिन दुनियावी इल्म नहीं है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, वो एतमाद नहीं है।